ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1। इस श्लोक को उच्चारण करने के पहले इस अध्याय का सारांश मैं स्वयं पढ़ता हूं। हिरण्यकशिप का साधु सदृश पुत्र प्रह्लाद महाराज। पिछले अध्याय में प्रह्लाद महाराज का गुण के वर्णन हो चुकी हैं और इस अध्याय में विशेष करके कैसे उनके साधु स्वभाव को कैसे वो प्रदर्शित किए प्रतिकूल परिस्थिति में। पिता की प्रताड़ना से भी वो विचलित नहीं हुए, अपने साधु स्वभाव को उन्होंने ऐसे ही धारण करके रखे। इस अध्याय में प्रह्लाद महाराज अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाते थे क्योंकि वे सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते थे। जैसे कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है, हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद महाराज को सांप से डंसा कर तथा हाथी की पांव के नीचे डालकर मार डालने के ही यत्न किया किंतु फिर भी वो असफल ही रहा। हिरण्यकशिपु के गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जिनके नाम संड तथा अमरक थे, जिन्हें प्रह्लाद महाराज को पढ़ाने का भार सौंपा गया था। यद्यपि अध्यापक बालक प्रह्लाद को राजनीति अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विषयों की शिक्षा देने का प्रयत्न करते किंतु बालक उनके उपदेश पर कोई ध्यान नहीं देता था, अर्थात वह शुद्ध भक्त बना रहा। प्रह्लाद महाराज को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वह सबों के प्रति समान भाव रखता। एक बार हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य द्वंद्व में फंसा रहता है और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है, उसे चाहिए कि वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान की पूजा करने के लिए जंगल चला जाए। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी तो उसने निश्चय की, हो ना हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इस छोटे बच्चे को इस प्रकार दूषित कर रखा है। अतएव उसने अध्यापकों की आदेश दिया कि बालक का ध्यान रखे जिससे वो कृष्ण भावना भावित भक्त न बन जाए। किंतु जब अध्यापकों ने प्रह्लाद महाराज से पूछा कि वह उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है, तो उसने अध्यापकों को शिक्षा दी कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है, अतएव वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से अध्यापक बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को तरह तरह से डराया धमकाया। उन्होंने अपने सामर्थ्य भर उसे शिक्षा दी और जब उसे उसके पिता के समक्ष ले आए, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। सदैव की भांति प्रह्लाद महाराज ने भक्ति की नौ विधियों जथा श्रवण कीर्तन इत्यादि की प्रशंसा करनी प्रारंभ की। इस पर असुरराज हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध हुआ और संड तथा अमर्क दोनों अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित करने लगा। तब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि प्रह्लाद स्वतः भक्त होने के कारण उसके उपदेश पर ध्यान नहीं देता। जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से पूछा, अरे तुमने विष्णु की भक्ति कहाँ से सीखी। प्रह्लाद ने उत्तर दिया, जो लोग गृहस्थ जीवन में बंधे हैं वे न तो व्यक्तिगत रूप से न ही सामूहिक रूप से कृष्ण भावनामृत का विकास कर पाते हैं, प्रत्युत वे इस संसार में बारंबार जन्म लेते और मरते हैं और चर्बित चर्वणा करते हैं। प्रह्लाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे और इस तरह कृष्ण भावनामृत समझने के योग्य बने। इस उत्तर से हिरण्यकश्यपु क्रुद्ध हो गया और उसने प्रह्लाद को अपनी गोद से फेंक दिया, क्योंकि उस विष्णु का प्रह्लाद भक्त बन गया था जिसने उसके चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, अतएव वह विश्वासघाती था। अतः हिरण्यकश्यप ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि उसको मार डाले। उन्होंने प्रह्लाद पर तीक्ष्ण हथियारों से प्रहार किया, उसे हाथी के पांव के नीचे फेंका, उसे नारकीय जातना दी, उसे पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया और हजार जतनों से उसे मारने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। अतएव हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रह्लाद से अत्यधिक भयभीत हो उठा, उसने उसे बंदी बना लिया। हिरण्यकश्यपु के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र प्रह्लाद को अपने ढंग से पढ़ाते किंतु वह उनकी उपदेश को नहीं मानता था। जब अध्यापक गण कक्षा में न होते तो वो पाठशाला में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता और उसके उपदेश से उसकी सारी सहपाठी जो असुरों के पुत्र थे उसकी तरह भक्त बन गए। अभी हम श्लोक को उच्चारण करेंगे। श्री नारद उवाच पौरहित्याय भगवान् भृतः काव्याकिलासुरैः षण्डार्मर्कौ सुतो तस्य दैत्यराज गृहन्तिके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। श्री नारद उवाच महान संत नारद ऋषि ने कहा। पौरोहित्याय, पुरोहित कर्म के लिए भगवन अत्यंत शक्तिमान वृतः चुना गया काव्य शुक्राचार्य कीला निस्संदेह असुरे असुरों के द्वारा संड अमरको संड तथा अमरक सूतौ दो पुत्र तस्या उसके दैत्यराजा दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु गृहांतिके घर के पास। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महामुनि नारद ने कहा हिरण्यकशिपु की अगुताई में असुर ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के दो पुत्र संड तथा अमरक हिरण्यकशिपु के महल की ही पास रहते रहे। तात्पर्य, प्रह्लाद की प्रारंभिक जीवन की कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। शुक्राचार्य नास्तिकों के विशेष रूप से हिरण्यकशिपु की पुरोहित बने और इस प्रकार उसके दो पुत्र संड तथा अमरक हिरण्यकशिपु के महल के पास रहने लगे। शुक्राचार्य को हिरण्यकशिपु का पुरोहित नहीं बनना चाहिए था क्योंकि स्वयं हिरण्यकशिपु तथा उसके सारे अनुजाई नास्तिक थे। ब्राह्मण को ऐसे व्यक्ति का पुरोहित बनना चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति की उन्नति में रुचि रखे, किंतु शुक्राचार्य नाम ही ऐसे व्यक्ति के सूचक हैं जो अपने पुत्रों तथा वंशजों को लाभ दिलाने में ही रुचि रखता है। भले ही धन कैसे भी आए, असली ब्राह्मण को नास्तिक लोगों का पुरोहित नहीं बनना चाहिए। यह शास्त्रीय सिद्धांत है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्वीय इमा पुरो विभो निर्माय सेते जदमो सपुरुषा भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका स्वर्णम कृषिष्टम भगवन बचंसि मे। हरे कृष्ण। तो रामनवमी के पावन अवसर पर और राम जी की पहला दिन है जहाँ पर वो लीला करते हैं वृंदावन में कृष्णचंद्र के रूप में, तो सबको इस धाम में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रह्लाद महाराज अपने साधु स्वभाव को प्रतिकूल परिस्थिति में भी बनाए रखे। तो पिछले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज नारद जी से प्रह्लाद जी के बारे में प्रश्न पूछे कि प्रह्लाद एक साधु स्वभाव, सज्जन संपन्न और पिता के अनुजाही थे और पिता को ही देवता के समान सम्मान देते थे। ऐसे लगता है कि कभी कभी पिता अपने पुत्र को शासन करने के लिए, सदमार्ग में लाने के लिए उनको कुछ दंड देता है, परंतु हिरण्यकशिपु ने क्यों अपने पुत्रों को शत्रु के रूप में देख करके उनको मारने के लिए चाहा कि? तीन श्लोक में ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछे। ये बड़े आश्चर्य लग रहा है। ऐसा हम देखते हैं कि सातवां स्कंध की पहला अध्याय में तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज प्रश्न भी किए थे नारद जी से कि समंग प्रिय भगवान सबके लिए समान है और सबकी हितैषी है, सुहृद भी है, परंतु ऐसे उनकी क्रियाकलाप से लगता है कि वो देवताओं की समर्थन करते हुए असुरों से शत्रुता करते हैं। ऐसे तो लगता है कि उनकी व्यवहार विषम है, ये मुझे संशय लग रहा है। और फिर वही विषमता के विषय में कि भगवान किस प्रकार व्यवहार में विषम होते हैं, उस प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए नारद जी ने उनकी कथा सुना कि महाराज आप तो स्वयं ही थे कौन सी यज्ञ में जो शिशुपाल को निधन किए थे, राजसूय यज्ञ। आप तो देखे स्वयं हिरण्यकशिपु ने सॉरी शिशुपाल को मारने के पश्चात शिशुपाल की आत्मा किस में विलीन हो गया, साक्षात भगवान में ही विलीन हो। तो फिर आश्चर्य क्या है? नहीं, बाहर तो इसे लगा उसका तो सर काट दिए चक्र से। ये भगवान के स्वभाव को समझने के बहुत आवश्यकता है। नवेद कश्चित भगवत चिकित्सितम तबे यमानस्य नृणम विडम्बनम। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक खूबी है, वो हमेशा ही विषमता क्रिएट करता है, क्योंकि संसार ही द्वंद से भरा हुआ है। यहां तक कि भगवान की भी कमी निकालने के लिए सतत प्रयत्न रहते हैं। क्यों भगवान होकर की लड़कियों की वस्त्र चुरा लिए, ये भगवान है? किसने कंप्लेन किया कि भगवान होते हुए भी उन्होंने मां के दूध इतने साल तक पिए? ज्यादा दूध पीने से बच्चा के स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, दांत में कीड़ा लग जाता है, ये सिद्धांत दिए। और उतना नहीं, उन्होंने कोर्ट में भी ये केस डायरी की विदेश में। तो इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं विषमंग मति नृणाम, लोगों की मति में चिंतन में पूरा बीज भर गया है, इसलिए हर चीज उनको विषम लगता है। परंतु यहाँ फिर युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं बाप बेटा के रिश्ता को लेकर कि कैसे ये बाप है। प्रलंभनम एक शब्द प्रयोग किए हैं व उपलम्भनम, जिसमें दंड देना, जिसका अर्थ है दंड तो देते हैं, वो होता है स्नेह। जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है जिसमें श्रीधर स्वामी ये बात को उठाए हैं कि भगवान कह रहे हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम। तो कहते ना, एक को परित्राण करते हैं और एक को विनाश करते हैं, तो लगता है तो विषय में कहते नहीं, इन स्वभाव को समझने के लिए एक माँ को देखना चाहिए। जो माँ कभी कभी बेटा को गोद में बैठा करके, अपने संतान को गोद में बैठा करके उसको चुमती है, स्नेह करती है, लालन पालन करती है, परंतु कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है माँ अपने बच्चों को सुधारने के लिए दंड भी देती है, मारती भी है अपने हाथ में। यहाँ तक कि माता जसोदा भी अपने स्नेह लाडला लाला को भी कान पकड़ करके रस्सी में बांध करके उनको प्रताड़ना की, वो स्नेह की आभास है। लेकिन जो माँ नहीं बनी है व माँ के स्नेह जिसके अंदर नहीं है, उनको लगेगा कि ये तो विपरीत भाव है, ये स्नेह है कि ना शत्रुता है। तो ये जो तीन प्रश्न पिछले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज ने पूछे कि कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे उन्होंने उनको मारने के लिए, अपने पुत्रों को मारने के लिए इस प्रकार की बहुत प्रयत्न किए। शुद्धाय पिता आत्म साधवे यगम, और अपने पुत्र कैसे था, साधु स्वभाव वाले, और पुत्र भी ऐसे नहीं था कि बाप जो बोल रहा है उसकी विरोध करता है, नहीं, वो सही बात बताया, लेकिन पिताजी को जैसे एडिकेट से सम्मान करना चाहिए इसे भी सम्मान किए। इसलिए कहते पुत्रान विप्रतिकुलान सो पितरम, इसलिए पिता को कैसे होना चाहिए, जो पुत्र ठीक रूप से पिता के साथ व्यवहार करता है तो उसके प्रति पिता का व्यवहार ऐसे होना चाहिए, पुत्र वत्सला। हाँ, ऐसे पुत्र वत्सला पिता उपलम्बनते, कभी कभी उनको प्रताड़ना करते, किस लिए, शिक्षार्थम न एवं अघं अपरम जथा, शत्रु जैसे मानकर कि उसको दंडित करे, मारे व मारने के लिए प्रयत्न करे, वैसा तो व्यवहार नहीं देखा जाता है। ऐसे होता है क्या, नहीं होता है, ऐसे समाज में ऐसे नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि हिरण्यकशिपु अनाड़ी था, उसको कुछ ज्ञान नहीं था, वो तो सब कुछ जानता था, वो राजा था। तो इसलिए इससे लगता है कि क्यों क्यों ऐसे किया, किम उतः अनुबसानम साधु सदृशान गुरुदेवतानम, चार विशेषण दे रहे, अपने पिता को भगवान के समान सम्मान करने वाला, अनुबसानम उनकी आज्ञाकारी थे, साधु तदृशम अर्थात सहनशील थे। तो इसलिए मेरे मन में एक कौतूहल हो रहा है, मतलब जानने की इच्छा है, समझने की इच्छा है, क्यों एतत् कौतूहलम ब्रह्मन् अस्माकं विधमं प्रभु पितुः पुत्राय जद्वेष मरणाय प्रयोजित। और बाप बेटा का बीच में इतनी द्वेष हो गया, उत्पन्न हो गया कि पिता पुत्रों को मारने के लिए इस प्रकार वहां प्रयत्न किए, बहुत प्रकार के नाना उपाय किए उसको मारने के लिए। तो इस कथा के शुरुआत इस प्रकार कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं कथा की, कौन, नारद मुनि। ध्यान दीजिए, ये प्रसंग विशेषकर किसके बीच में चल रहा है चर्चा, ओरिजिनल है स्पीकर है नारद जी, और ओरिजिनल लिसनर है श्रोता है युधिष्ठिर, लेकिन इस कथा को कौन प्रस्तुत कर रहा है अभी, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज। और उसके पहले रिलीज कर रहे हैं कैसे, सुतो गोस्वामी कहते ये कथा को मैं सुना था इसलिए 88,000 ऋषियों को, सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो पहला शब्द कहते हैं कि असुर लोक, असुरी, देखिए यहां शब्द प्रयोग है असुरी, हालांकि राजा है कौन, हिरण्यकशिपु, लेकिन ऐसे राजा के पास एक शक्ति है जो हम इसको कहते हैं कि भगवान की प्रतिनिधि है, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि पौरुषम दृशु, एक श्लोक में कह रहे हैं ना कि जो राजा है मैं उनकी विभूति हूँ। तो राजा को भगवान की विभूति के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसके पास राज दंड होता है। परंतु यहाँ देखा जाता है कि हिरण्यकशिप राजा होते हुए भी ये असुरों का मत भी लेना पड़ा, वो कह रहे हैं कीड़ा असुरी काव्यम पौरहिताय, काव्य मतलब कवि की पुत्र बा विद्वान को भी काव्य कहा जाता है, जो ज्ञानवान है विचार से ले, तो उनको पुरोहित के रूप में चुनने के लिए असुर लोक और हिरण्यकशिपु रेकमेंड कर, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि जो इलेक्शन सिस्टम है, चुनाव लड़ते हैं, वो असुरों की सिस्टम है, क्योंकि यहां प्रजा की इच्छा पर ही चुना जाता है राजा, है ना। क्या कहते हैं हमारी जो इंडियन पॉलिसी है गणतंत्र का, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, और एक ऑफ द पीपुल, जो भी, तो लोगों की मत के अनुसार चुना जाता है। और मत तो सब डिफरेंस होता है, मत में तो ऐक्यता नहीं होता है। इसलिए जो पहले वैदिक सिस्टम था, राजा को भगवान की प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता था, और जो राजा कहता था उसी को ही प्रजा स्वीकार करते थे, इसलिए राजा और प्रजा के बीच में एक समन्वय था। परंतु यहां शुक्राचार्य को पुरोहित के रूप में चुनने के लिए असुरों का भी मत लेना पड़ा, इसलिए कीला असुरे, यहां पर कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु समर्थन किया लेकिन असुर भी, हाँ असुर प्रस्ताव रखे, हाँ शुक्राचार्य है। क्यों शुक्राचार्य को पुरोहित के रूप में नियुक्त किए वा वृत्ति प्रदान किए, वृतः क्योंकि भगवान कि बहुत विद्वान थे, शक्ति संपन्न थे। क्या शक्ति था उनके पास, कहते संजीवनी मंत्र का ज्ञान शुक्राचार्य के पास ही था, जबकि बृहस्पति के पास नहीं था, वो देवताओं की पुरोहित है। और भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं पुरोधनसं च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनम अहं स्कंध सरसामसी सागरम। तो कह रहे हैं पुरोधनसं च मुख्यं मा, पुरोहित में मुख्य कौन है, बृहस्पति, बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु है, परंतु अपने बेटे को कच्छ को उन्होंने संजीवनी मंत्र जब सीखना चाहता था, मुझे पता नहीं है, तुम सीखना है तो जाओ किसके पास, किसके पास, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य कौन है, गीता में भगवान शुक्राचार्य के बारे में क्या बताया है, हाँ कवि नाम विद्वान में उसना कवि, वो बड़े विद्वान उसना, उसना रस। और उन्होंने इतने बुद्धि रखे हैं, भगवान को पहचान कर लिए। भक्त लोग सुन सुन की तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवान को नहीं जान पाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। लेकिन इनके पास इतने ज्ञान था, देख करके इन्होंने बता दिए ये कोई बैना नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है, ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है, तीन पग भूमि मांग रहा है, लेकिन सब लूट लेगा, तुम दे नहीं पाओगे, इतना भी बता दिए। परंतु देखिए, इतने ज्ञान रखने वाले भी भगवान उनको पुरोहित का दर्जा नहीं दिए। पुरोहित का मतलब होता है जो पूर्व मतलब घर की हित करे, कहते ना पुरोहित को बुलाओ, कुछ मंत्र उच्चारण कर ले। और जो वास्तविक विद्वान है वो पुरोहित कार्य नहीं करता है, सच्ची में देखा जाए वो कहता है ये बड़ा लालच है, इसमें फंसने का बहुत चांस है। षष्ठ स्कंद में एक प्रसंग है, जब देवता लोग बृहस्पति को अपमान किए तो फिर असुर लोक ने देवताओं के ऊपर हमला किए और बुरी तरह से हार गए देवता लोग, तो फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी एक उपाय बताए, कहते देखो असुर लोक ने शुक्राचार्य की ऐसी सेवा किया, ऐसे सेवा किया, देखो सारे धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, सारे शक्ति उनको प्राप्त हो गया, जैसे कि तुम लोग पराजित हो गए। और तुम लोग देवता होकर के भी तुम्हारा अक्ल नहीं है कि कैसे गुरुजन के साथ व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मण के साथ व्यवहार करना चाहिए, इतनी प्रमत्त हो जाते हो तो क्या करें, ऐसे ही हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया धन और मान से, कुछ तो उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी कह जाओ, तुमको यदि बचने के रास्ता खोज करना चाहते हो मैं एक उपाय दे रहा हूं कि तुम जाओ तोष्टा के पुत्रों को पुरोहित के रूप में मना लो, हाँ उनकी कुछ त्रुटि है उसको सहन करना है, तब फिर तुम लोग विजयी हो सकते हैं, गड़बड़ी नहीं करना। कहता हाँ ठीक है। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने विश्वरूप के पास गए और बड़े लज्जिक झड़े, हाथ जोड़कर ये प्रणाम किए, कहे कि देखो हम तो आपके पिताजी के समान हैं, क्योंकि हम तो सब देवता हैं और आपका पिता तोष्ट्रा भी देवता है। और ऐसा है कि शास्त्र में कहा जाता है कि पिता माता की सेवा करना पुत्रम बतामपि, जिसका जो शादी विवाह कर लिया है उसके भी बच्चे हो गए हैं उसकी परम धर्म है। और फिर इनकी बारे में क्या कहना है जो ब्रह्मचारी है। इसलिए बाहर के लोग भी स्कंद ब्रह्मचारी को बहुत ये करते, देखो सबसे बड़ा धर्म है बाप पिता माता की सेवा करना, उसको छोड़ करके तुम चूल्हा धारण कर लिए, गेरुआ पहन लिए, क्या धर्म की बात करते, क्या गीता बांट रहे हो, पहले धर्म पालन करो पहले। तो ऐसे ही बोलते हैं। मधुसूदन प्रभु को पता होगा ना, बस लेके जाते हैं लोग क्या गीता बांटते समय कहते हो, है ना, खास करके पिता माता का सेवा बड़ी धर्म है। और जो लोग कोई भागवतम पढ़ा होगा ना ये सिद्धांत भी दे सकता है और कहेगा कि देखो सबसे परो धर्म कहा गया है, परंतु पर धर्म ये नहीं है, सबे पुंसा परो धर्म जतो भक्ति राधोक्य जी, ये पर धर्म। लेकिन यहां पर देवता लोग विश्वरूप को जैसे भी हो फंसाने के लिए हो, लेकिन ये सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पुत्राणांग ही परो धर्म पितृ शुश्रूषणांग सताम अपि पुत्र बतंग ब्रह्मन किमुतंग ब्रह्मचारिणाम। फिर ब्रह्मचारी के बारे में क्या कहा जाए और क्या सिद्धांत दे रहे हैं, सुनो शास्त्र में इसे कहा गया है, आचार्य ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पतिर मूर्ति माता साक्षात खेति तनु दयया भगिनी मूर्ति धर्मस्यात्मा तिथि स्वयं अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः। अर्थात कहते हैं आचार्य व गुरु वो किसकी प्रतिनिधि है? वैदिक शास्त्र के। इसलिए कहते आचार्य ब्रह्मण मूर्ति और पिता मूर्ति प्रजापते। और पिता कौन है? जो जन्म देने वाले पिता, वो कौन है? प्रजापति, ब्रह्मा की स्वरूप है। जो गुरु आपको ज्ञान दिए, यज्ञ उपवीत संस्कार कर दिए, तो वेद की स्वरूप है, वेद के समान। हाँ, साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्र ही कहते हैं, हरि के समान है, ये सारे शास्त्र भी कहते हैं। परंतु ये ज्ञान देने वाले ये वेद स्वरूप हैं, साक्षात शास्त्र स्वरूप हैं। और पिता ब्रह्मा जी के समान है, और भाई इंद्र के समान है, और बहन वो तो दया की मूर्ति हैं, और पृथ्वी लोक वो माता के समान है। और भाई देखो, जो लोग बिना निमंत्रण से आ जाते हैं वो तो देवभव है, देवता है, लेकिन जो बुलाए हुए अतिथि हैं वो अग्नि के समान है। जो आमंत्रित मेहमान है वो अग्नि के समान है। और समस्त जीव को ऐसे देखना चाहिए, वो विष्णु के स्वरूप है। ये कह करके उनको कह के देखो बेटा, हम बड़े होने पर भी हम आपकी सामने छोटे हैं। कहते क्यों? कहते शास्त्र में ऐसे कहा गया है, उम्र से सबकी छोटा बड़ा का निर्णय लिया जाता है, लेकिन जहां पर वैदिक शास्त्र के निरूपण है तो वहां छोटा बड़ा का निरूपण होता है जो लोग ज्ञानी हैं। और ज्ञानी को सब लोग सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। इसलिए आप शर्माइए मत कि हम आपके पिता के समान हैं, उम्र में बड़े हैं, आप रहित बने। लेकिन विश्व रूप ने क्या जवाब दे, क्योंकि बहुत सज्जनता से तो बात कर रहे थे, नीति की बात कर रहे थे। इसलिए विश्व रूप ने अपने दिमाग से काम लिया और कहे कि देखो, ये जो पुरोहित काम है ये शास्त्र में ऐसे कहा गया था बिगर हितम, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बंधन है। क्योंकि जिसकी अधीन में रहते हैं ना, उसी के आदेश को पालन करना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण भगवान के आदेश को छोड़कर किसके आदेश को पालन नहीं करता है, इसलिए ब्राह्मण को स्वतंत्र कहा जाता है। ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं कर सकता है। और कलयुग में ये कहा गया है कड़ो शूद्र संभव, इसका मतलब है कोई स्वतंत्र नहीं है, सब एक नौकरी के पीछे पड़े। इसलिए कहा गया है विगर्हितं धर्मशीलै ब्रह्म वर्चं उपाव्यधम। सचमुच कोई ब्राह्मण है जो भगवत भगवान की पर आश्रित है, तो उनकी एकमात्र वृत्ति होता है क्या है? उच्छयशीलम। जो खेती में कुछ अन्न गिर जाता है उसको उठा करके लाता है, वा कोई अनाज मंडी में कुछ अनाज गिर गया उसको उठा के लाता है। इसलिए जो वास्तविक ब्राह्मण है और अकिंचन है, भगवत पर आश्रित है, उनकी धन क्या है? अकिंचनानाम ही धनम शिलोच्छनम तेने हनिवर्तित सात सत्क्रिया। साधु की ऐसे ही क्रिया होती है। कथं विगर्ह्यं न करोमि अधीश्वरः पुरोधसं हृष्यति चेन दुर्मति। जिनकी मति बिगड़ गया है वो सोचता है भाई देखो, मुझे पुरोहित होने के लिए चांस मिल गया। और यहाँ पर भी नौमा स्कंद में भी निंदा किया गया है बृहस्पति को भी। जब निमि महाराज बोले भाई मेरे यज्ञ संपन्न करो, तो ये कहे कि देखो तुम तो मेरे चेले हो, बाद में कर लूंगा, मैं थोड़ा जाता हूँ अभी स्वर्ग। क्योंकि इंद्र ने बहुत दक्षिणा देने वाला था, इसलिए वो लालच में बृहस्पति ना वशिष्ठ वहाँ चल गए पुरोहित स्वीकार करने के लिए। उस समय झगड़ा चल रहा था कुछ, हाँ इंद्र और बृहस्पति के बीच, तो वशिष्ठ जी वहां पर पुरोहित बन के चले। तो निमि महाराज सोचे ये जीवन का क्या भरसा है, आज है काल नहीं रहे, इसलिए जो सत्कर्म करना है तुरंत कर लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने दूसरे पुरोहित बुला लिए और इस क्रोध से वो इंद्र का तो ज्यादा दक्षिणा लफापस शायद मोटा होगा तो वहां चल गए वो। और जब वापस आए देखे निमि महाराज यज्ञ संपन्न कर चुके, उनको साफ दे दिए। वहां पर भी सुखदेव गोस्वामी निंदा कर रहे कि इस प्रकार जो ब्राह्मण है वो धन की लालच में पुरोहित कर्म नहीं करना चाहिए, तो वो मना कर दिए। लेकिन कहते कि दुर्मति लालची व्यक्ति पुरंधसाम हृष्यति जेना, उनको यदि पुरोहित पोस्ट मिल गया खुश हो जाते। परंतु मैं जानता भी हूं लेकिन क्या करूं, आप बताओ मैं करूं क्या। अभी आप लोग मेरे पिताजी के समान हैं और देवता हैं। फिर कहते तथापि नम प्रति ब्रुयाम गुरु भी प्रार्थितम कियत, फिर भी मैं करूंगा क्योंकि आप मेरे गुरुजन हैं। परंतु परिणाम क्या हुआ अब देखिए, जो इंद्र ने इतनी सत्कार करके बुलाया था, थोड़े से मां के नाम में कुछ डाल रहे थे, उठाए अपना वज्र और उनके तीन सर को काट दिए। इसलिए असली ब्राह्मण कभी भी किसी के पास जाकर के हाथ नहीं फैलाता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि ऐसा कृष्ण नगर में कलकत्ता में मतलब मायापुर के पास जो कृष्ण नगर है, तो वहां एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्यादा समय नहीं है, 100 साल पहले ये घटना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्य व जजमान से कोई दक्षिणा नहीं लेता, वह तपस्या में संलग्न रह कर कि खेतों में जाकर कि किसान द्वारा ब्राह्मण के लिए छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इस प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं, व्यापारी अन्नों का थोक क्रय विक्रय करते हैं। इस तरह ऐसे उच्च ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण स्वच्छा से गरीब का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवदीप के निकट कृष्ण नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार ब्रज कृष्ण चंद्र ने, आप जानते कृष्ण नगर क्यों पड़ा, आप लोग सो गए हैं ना मायापुर, जो जाते हैं कलकत्ता से आते तो कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन भी है और कृष्ण नगर बस स्टैंड है वहाँ उतरते। तो ये कृष्ण चंद्र राय के नाम पर कृष्ण नगर पड़ा है। तो ब्रज कृष्ण चंद्र ने उस ब्राह्मण को कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाने चाहा की, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया और क्या कहा उनको, कौन आपको बोला महाराज मैं गरीब हूं, मेरे पास सब कुछ है। कहते नहीं कुछ भी नहीं है आपका पास, कुछ अन्न भरा नहीं है। कहते महाराज ये मत समझे कि मैं भूखा रहता हूं, मैं प्रतिदिन जाता हूं, यदि कोई खेतों में कुछ अन्न गिरता है तो उसको उठा के लाता हूं, नहीं तो वो मंडी में जाता हूं वहां से यदि कुछ गिरा रहता उठाता हूं। और कभी कभी मैं जिनको पढ़ाता हूं वो शिष्य लोग ने कुछ हमको दे देते हैं अन्न, चावल गेहूं दे देते हैं। और मेरे घर के सामने जो इमली की पेड़ है वहां से मैं कुछ पत्ता तोड़ता हूँ, कोमल पत्ता, और उसको मैं चटनी बना लेता हूँ और उससे हमारे भरण पोषण होता है। और महाराज मैं सच कहूँ मैं किसे उधार नहीं लिया हूँ, मेरे पास कोई कर्ज नहीं है। तो वो व्यक्ति सुखी है जिसके पास कोई कर्ज नहीं है। परंतु आज कलयुग में देखिए कि शूद्र होने के कारण कुछ भी चीज लोग यहाँ तक एक स्कूटी भी लेते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, वो भी कहते हैं मंथली इंस्टॉलेशन है ना, घर भी खरीद करो कार भी खरीद करो। तो शूद्रता की कोई हद नहीं है, इतनी पतित हो गया है समाज। निष्कर्ष यह निकला कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभु धन प्राप्त हो, किंतु उसे चाहिए कि पुरोहित से प्राप्त इस धन को वो अपने व्यक्तिगत लाभ में न खर्च करे, उसे परमेश्वर की सेवा में लगाए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में शुक्राचार्य की जो पुरोहितता स्वीकार करना, असुरों के पक्ष में जाना, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका नाम शुक्राचार्य इसलिए है, शुक्र के मतलब होता है एक शुक्र शिष्य होते हैं और एक पारंपरिक शिष्य होते हैं गुरु परंपरा के द्वारा। वो डिफरेंस ये है कि बाप फिर देता है, जैसे हमारे गोस्वामी की परंपरा है, वो कहते फिर बाप बेटा को देके जाता है, लेकिन बेटा योग्य होना चाहिए। और वो भांग पिए और गंजा पिए और बेटा को बैठा दे आसन में, वो गोस्वामी थोड़ी होता है। कुछ जीन पैंट पहन करके फिर आरती करे गोस्वामी की, तो इसी प्रकार वो प्रामाणिक पुरोहित नहीं माना जाता है, भाचार्य नहीं माना जाता है। लेकिन शुक्राचार्य नाम से इसे प्रतीत होता है कि शुक्राचार्य को शायद जब चुना गया पुरोहित के रूप में, तो शायद कि उनकी रक्षणा व्यक्षणा के लिए, संरक्षण के लिए, उनके भरण पोषण के लिए हम लोग व्यवस्था करना चाहिए। तो उनकी फ्लैट था किसके पास? राजा के पास, हिरण्यकश्यप की घर के पास, गृहांतिके, दैत्य राज गृहांतिके। और बेटे को बाप चाकरी करेगा, भत्ता मिलेगा, बेटे को किसको मिला? संडार्मकम सुतौ तस्या, उनकी बेटे को भत्ता मिलता था। इसलिए बाप ने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ अभी तपस्या करने के लिए, आप थोड़ा संभाल लो, क्योंकि परंपरा को आगे बढ़ाना है ना, मैं यजमान किया फिर तुम भी करोगे, ये स्वतंत्रता की हानि होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं शुक्र आचार्य मतलब शुक्र से, जो जीन से जो आचार्य बनता है, फिर अपने बेटे को सुरक्षित करने के लिए जो इसी प्रकार उनको प्रशिक्षण देता है, उनको कहते हैं शुक्राचार्य। लेकिन हमारे जो परंपरा क्या है, इसको कौन से आचार्य परंपरा कहते हैं, कौन बता सकता है? किस आचार्य परंपरा? वो शुक्राचार्य है। हाँ, डिफरेंस। हाँ, नामाचार्य नहीं, हमारी ये परंपरा जो है ज्ञान के द्वारा है। हमारी आचार्य सिस्टम में यह शुक्र नहीं है, ये ज्ञान आचार्य है। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। इमं विवस्वते जोगम प्रक्तवान अहं अव्ययम् विवस्वाना मनवे प्राह मनोरिक्वाकु अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयः विदुः सकालनेह महता जोगनष्ट परंतप। ये श्लोक लिख करके हमारी परंपरा को प्रभुपाद प्रस्तुत करता है भगवद गीता में, पढ़े कि नहीं? एवं परंपरा प्राप्त, ये है ज्ञान की परंपरा। एक दूसरे को असली सही आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उसको आचार्य के रूप में अपॉइंटमेंट करते हैं। चाहे भक्ति विनोद ठाकुर का अनेक कैसे पुत्र थे, लेकिन उन्होंने एक को चुने, भक्ति सिद्धांत, वो परफेक्ट थे। अद्वैत आचार्य कैसे अनेक पुत्र थे, लेकिन एक को उन्होंने चुने। नित्यानंद प्रभु कैसे अनेक पुत्र थे, लेकिन एक वीरभद्राचार्य को उन्होंने चुने। तो पुत्र होने पर भी ऐसे नहीं कि सब आचार्य बनेंगे, जो योग्य होता है उनको देना चाहिए। और यहां तक अपने पुत्र भी ना हो वो भी आचार्य बन सकता है, यदि उसके पास योग्यता होता है। इसलिए प्रभुपाद हर परिस्थिति में बात को खंडन किए हैं। ये जो जाति गोसाई भाई जो पारंपरिक रीति, इसको बहुत खंडन किए। इसलिए ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करना चाहिए। यदि हम परंपरा से जुड़े हैं, केवल दीक्षा नहीं, दिव्य ज्ञान खरित्यम, दिव्य ज्ञान को धारण करने के लिए शिष्य के पास पात्रता रहना चाहिए, तब फिर वो प्रामाणिक शिष्य है। और प्रामाणिक गुरु का भी यही कर्तव्य है, शिष्य को असली आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उसको एक प्रामाणिक गुरु बनाए। पहले एक प्रामाणिक शिष्य बनता है, फिर प्रामाणिक गुरु। लेकिन ये जो प्रयोजन है, आप देखते हैं कि शुक्राचार्य आचार्य बने, बेटियों का झगड़ा हो गया राजा वृषभपर्वा का, और फिर शुक्राचार्य का शर्मिष्ठा और देवजानी। अब देखो, बाप ने कहा और चाकरी नहीं चाहिए, भागने लगे। फिर वृषभपर्वा रास्ते में जा कर के पैर में गिरे, कहते हमारे तो नुकसान हो जाएगा। कहते मैं क्या करूँ, तुम्हारा बेटी ने हमारा बेटी को बोल दिया है कि कुतिया की तरह खड़े रहते हो घर में, तुम ऐसे बात बोलते हैं। क्योंकि असुरुणी थी, सभ्यता तो बात करना नहीं आती थी, कुतिया बोल दिया। अरे चलो आप मुझे बोल देते, मेरी बेटी है वो शादी नहीं किया है, ऐसे बात बोलते। नहीं, मेरी बेटी जो कहेगा उसकी इच्छा को पूर्ति करो। कहते ठीक, चलो मुझे अपमान किए थे ना, मेरी दासी तुम बनो, मैं शादी करके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा शादी नहीं होगा, क्या करें। ऐसा संकट होता है, असुरों के पक्ष में रहने से ऐसे संकट उत्पन्न होता है। फिर बाप चाह रहा है उसको सिखाने के लिए, कच्छ जब गया था, असुर लोग उसको मार के खा लेते थे, राख बना दिए कच्छ को। लेकिन प्रेम तो हो गया था, किससे हो गया था, कच्छ से प्रेम हो गया था, किसका, देवजानी का। इसलिए बाप को बार बार कहते थे बचाओ बचाओ बचाओ। इसलिए सामंजस्य नहीं रहता है, ना बाप बेटी का रहेगा, ना गुरु शिष्य का रहेगा, ये है जहां पर ये कंडीशन रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने यहां निंदा किए हैं कि शुक्राचार्य जैसे आचार्य बाप पुरोहित नहीं बनना चाहिए। इसलिए भगवान भी उनको पुरोहित का दर्जा नहीं दिए। पुरोधन संच मुख्यंग मांग विद्धि पार्थ बृहस्पति, बृहस्पति विद्धि। हालांकि पढ़ा लिखा में कम है, व्यवहार में कम है, लेकिन फिर भी भगवान उनको चुने, क्योंकि देवताओं की पक्ष में है, और देवताओं की पोषण कौन करते हैं, भगवान। इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृंडयन्ति जुगे। तो इसलिए हर व्यक्ति का ही कर्तव्य होना चाहिए जो सतपथ में जा रहे उनके साथ दे। हालांकि हमारे पास कोई योग्यता ना हो, लेकिन सत अनुवर्तिनम, जो सतपथ में चलता है उनके साथ देने से आप भी सत बन जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।